वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक संख्या 1 सब लोग निकालिए पृष्ठ संख्या 504 मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितान् तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। शब्दार्थ बोलिए। अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा ये जो शास्त्र विधि शास्त्रों के विधान को उत्सृज्य त्याग कर यजन्ते पूजा करते हैं श्रद्धया पूर्ण श्रद्धा से अन्विताः युक्त तेषां उनकी निष्ठा श्रद्धा तो लेकिन का कौन सी कृष्णा हे कृष्ण सत्वम सतोगुणी आहो अथवा अन्य रजः रजोगुणी तमः तमोगुणी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं रजोगुणी या तमोगुणी? सब लोग मेरे साथ प्रार्थना बोलिए। प्रार्थना निकालिए सब लोग। ओम अज्ञान तिमिरां धस्त ज्ञानांजन सलंकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता त्रिविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे।
हाँ, इस श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं ना, भगवान नहीं, कौन कह रहे हैं? अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न है, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ करके, हाँ, तो अर्जुन का प्रश्न है कि जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, है ना। अभी प्रश्न अर्जुन के मन में क्यों उठा? अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ करके और श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, तो अर्जुन का प्रश्न क्यों उठा? क्यों कि 16वें अध्याय में 30वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यहां शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके क्या करता है, वर्तते काम कारतः, मनमाना आचरण करता है, है ना। तो भगवान ने कहा था जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना आचरण करता है तो उसका क्या होता है, उससे ना तो सफलता प्राप्त होती है और ना सुख प्राप्त होता है और ना परम गति प्राप्त होती है। भगवान ने कहा है ना, तो अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, है ना। और सोचो कितना अच्छा प्रश्न अर्जुन ने किया। अर्जुन का प्रश्न बहुत बढ़िया, बहुत काम का है प्रश्न, है ना, क्योंकि ये बातें जो है ना बड़ी व्यवहारिक है। और देखिए अर्जुन ने कितना अच्छा प्रश्न किया है? भगवान ने कहा कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमान आचरण करता है उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है और ना परम गति प्राप्त होती है। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न किया, देखो कितनी बुद्धि, अर्जुन की बुद्धि जो ना कितनी दूर गई। अर्जुन ने क्या कहा, हाँ, कि हे कृष्ण, कोई शास्त्र विधि को छोड़ता है, छोड़ देता है, अगर श्रद्धापूर्वक पूजा करे, श्रद्धापूर्वक पूजा करे, है ना, तो उसकी निष्ठा कैसी है, कृष्ण सत्वगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। हाँ, तो इतना अच्छा जो है ना अर्जुन का प्रश्न है, शास्त्र विधि छोड़ देता है और श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। और ये जो है ना देखा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है ना। तो शास्त्र की कोई, शास्त्र विधि की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी जैसी श्रद्धा से आप जो है पूजा करो, जिस तरह से आप चाहो ऐसी अपनी श्रद्धा से पूजा करो, शास्त्र विधि की जरूरत क्या है। ऐसा कई लोग कहते हैं, हम तो अपनी श्रद्धा से जिसमें चाहे हम ऐसी श्रद्धा बना लें, और आप जो है ना अगर पूजा करोगे तो उसी में ही मतलब आपको वही चीज प्राप्त हो जाएगी जो आप पाना चाहते हो, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। तो कोई चिंता नहीं करते शास्त्र विधि की, कोई किसी पत्थर की पूजा करते हैं, कोई किसी पेड़ की पूजा करते हैं, किसी भी स्थान में जिसकी जो मर्जी है तो अपना पूजा करने लगते हैं, और कहते हैं कि हमारी श्रद्धा है, हम अपनी, हमारी अगर इसमें श्रद्धा है हम इसमें श्रद्धा बना लें तो हम जो है ना इस तरह की पूजा करें, है ना। लेकिन यहाँ पर शास्त्र विधि के अनुसार पूजा हो रही है, भगवान का जो मंदिर है शास्त्र विधि के अनुसार भगवान का अर्चन विग्रह है बनाया गया है, शास्त्र विधि के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा हुई, शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा हो रही है, नारद पंचरात्र आदि उनके अनुसार पूजा हो रही है। तो ये तो शास्त्र विधि के अनुसार है, लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न है कि शास्त्र विधि को छोड़ करके कोई अपनी श्रद्धा से पूजा करे तो उसकी क्या निष्ठा है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अगर आप विचार करोगे तो बहुत उपयोगी प्रश्न है, और अज्ञान जो है ना दूर होगा, बहुत भारी अज्ञान है लोगों के दिमाग में, है ना, वो दूर होगा। कोई कहते हैं भाई किसी में भी भगवान आप मान लोगे तो आप जो है ना उसी में ही भगवान को पा सकते हो, है कि नहीं। तो हम इनको भगवान मान लें और इनकी पूजा करना शुरू कर दें इनको भगवान मान करके, तो यही भगवान हमारे लिए बन जाएंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है ना। अच्छा हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, चौथे अध्याय का 39वें श्लोक है, भगवान ने बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वो ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया, हाँ इंद्रियों को बस में करके तत्पर होकर के कोई व्यक्ति श्रद्धा से पूजा करे तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अतिरेणाधिगच्छति, और ज्ञान प्राप्त करके बड़ी जल्दी ही परम शांति प्राप्त कर लेता है ना। तो ये तो श्रद्धा के अनुसार है। अच्छा अब आगे प्रोपर लिखते हैं, 16वें अध्याय में ये निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वो असुर है, जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देवता है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो तो उसकी स्थिति क्या होगी, है ना। देखिए अर्जुन ने कितना दिमाग लगाया अपना, इससे पता चलता है कि अर्जुन कितनी सावधानी से भगवान के उपदेश को सुन रहे हैं, नहीं तो कौन ऐसा प्रश्न कर सकता है। इतना अच्छा प्रश्न है कौन कर सकता है जिसने श्रवण किया हो, मनन किया हो, मंथन किया हो, है ना, तभी तो इतना अच्छा प्रश्न उठ सकता है, है कि नहीं। अर्जुन के प्रश्न जो है अमृत के समान है, और भगवान का जो उपदेश है वो समुद्र के समान है। उस उपदेश को श्रवण करके और मंथन करके अर्जुन ने प्रश्न निकाला, है कि नहीं। समुद्र मंथन से जैसे अमृत उत्पन्न हुआ ऐसे अर्जुन का प्रश्न अमृत के समान है। हाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं। हाँ, ये कैसी पूजा है? कोई व्यक्ति किसी को भी भगवान मान ले और पूजा करे तो कैसी पूजा है उसकी, है ना? कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है, अर्जुन का एक प्रश्न है। हाँ, कैसी पूजा है? क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं।
यहाँ पर अर्जुन कृष्ण का नाम लेकर के ही कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, कृष्ण से परे और कोई भी तत्व नहीं है। कृष्णम् वन्दे जगत गुरुम्, कृष्ण ही संपूर्ण जगत के गुरु हैं, तो कृष्ण ही परम प्रमाण है। इसलिए अर्जुन ने क्या कहा, हे कृष्ण,
वो जो है सही है, है ना? इस प्रकार से अर्जुन ने कृष्ण का नाम लेकर के कृष्ण से प्रश्न पूछा है। तेसाम निष्ठातु का कृष्ण, उनकी निष्ठा कैसी होती है? कृष्ण सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, है ना? आगे चल करके भगवान बताएंगे कि शास्त्र विधि को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वो श्रद्धा नहीं कराती। कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ देता है और फिर कुछ भी पूजा करे, वो श्रद्धा नहीं है, है? श्रद्धा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर शास्त्र विधि को छोड़ दिया तो श्रद्धा का कोई प्रश्न नहीं उठता है। श्रद्धा का मतलब क्या है? जो शास्त्र में बताया गया वो सही है। श्रद्धा का मतलब क्या है? यही तो है। अगर आप अपने मन माने ढंग से आप कुछ भी नियम बना लो, मनमाने ढंग से आप जो ना कुछ सिद्धांत बना लो, तो क्या ये श्रद्धा कहलाएगी? ये श्रद्धा नहीं कहलाएगी, है ना? अर्जुन ने प्रश्न किया है क्योंकि लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा है ना? हमारी श्रद्धा तुम्हारी श्रद्धा थोड़ी होती है। श्रद्धा होती है शास्त्र में, है ना? और शास्त्र हमारे बनाए नहीं, ना आपके बनाए हैं। किसके बनाए गए? भगवान के द्वारा बनाए गए, है ना? इसको श्रद्धा कहते हैं, है कि नहीं? जैसे सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, है ना, तो जब आप उनका पालन करते हो तो उसको कहते हैं कि आप जो है सरकार के प्रति वफादार हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर आप अपने नियम बना लो, सरकार ने जो नियम बनाए उनको छोड़ करके आप अपने नियम बना लो, है ना, तो ये क्या ये भी कोई नियम होगा? ये भी कोई नियम है? क्या ये भी कोई वफादारी कहलाएगी, है ना? और आप बड़ी जो है तत्परता से उन नियमों का पालन करते हो, ये आपने बनाए हुए नियम है, है ना? आपने बनाए हुए नियम होते हैं, उनसे क्या होता है? उत्पात पैदा होता है। उत्पात श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पात है विकल्पते, उत्पात। तो ये श्रद्धा नहीं है, ना तो सतोगुणी श्रद्धा है, न रजोगुणी श्रद्धा है, न तमोगुणी श्रद्धा है। आगे चल करके भगवान बताएंगे कि सतोगुणी श्रद्धा कैसी होती है, रजोगुणी श्रद्धा कैसी होती है, तमोगुणी श्रद्धा कैसी होती है। फिर भी श्रद्धा है, वो भी श्रद्धा है। तमोगुणी व्यक्ति जो है ना, शास्त्रों में कुछ तमोगुणी शास्त्र भी हैं और उनके अनुसार जो है ना तमोगुणी व्यक्ति जो है ना अगर पूजा करते हैं तो वो रजोगुण में आ जाएंगे। और रजोगुणी शास्त्र भी हैं, उनमें कोई व्यक्ति रजोगुणी व्यक्ति श्रद्धा करता है और पूजा करता है तो सत्वगुण में आता है। और फिर सत्वगुणी शास्त्र हैं, तो सत्वगुणी व्यक्ति अगर सत्वगुणी श्रद्धा करके पूजा करता है तो फिर वो तीनों गुणों से ऊपर भी उठता है, है ना? लेकिन वो तो श्रद्धा कहलाएगी, है ना? तो तमोगुणी व्यक्ति के लिए भी जो ना कुछ शास्त्र विधि बताई गई है कि ऐसे करो, तो इस प्रकार से तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, सत्वगुणी श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार। लेकिन जहां शास्त्र विधि ही नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की शास्त्र विधि नहीं है, है ना, अपने ढंग से अगर आपने विधि बनाई है तो वो क्या है? वो श्रद्धा है? वो श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा की बात नहीं। उसको फिर भगवान ने क्या बताया? दंभ अहंकार। ये दंभ और अहंकार है, ये अपना दंभ और अहंकार है। दंभ का मतलब दिखावा, दिमाग में दिखावा करना, और अहंकार, अहंकार का मतलब है कि जो मैं सोचता हूं वो सही है। शास्त्र कुछ भी कहें उससे क्या होता है? जो मैं कहता हूं वो सही है, तो श्रद्धा थोड़ी है, ये दंभ और अहंकार है, है ना। और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, अगर किसी को भगवान मान लेते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं, तो वास्तव में वो उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, अपने अहंकार की पूजा कर रहे हैं, अपने दंभ की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इनको भगवान माना तब ये भगवान बने हैं। इसलिए वो जिसको भगवान मान करके पूजा कर रहा है, वास्तव में उसकी पूजा नहीं कर रहा है, अपने अहंकार की पूजा कर रहा है। क्योंकि मेरा अहंकार ही तो है श्रेष्ठ है जिससे कि ये भगवान बने हैं, आप समझे ना। अगर मैंने आपको भगवान मान लिया और मैं आपकी पूजा करूं, तो मैं जानता हूं कि आप भगवान बने कैसे। मैंने बनाया आपको भगवान, तो कौन बड़ा हुआ? मैं बड़ा हुआ कि आप बड़ा हुआ? आप बड़े हुए। मैं बड़ा हूं क्योंकि मैंने आपको भगवान बनाया है, और मैं चाहूं तो आपको भगवान ना मानूं। तो आपको जो मैं भगवान मान रहा हूं, तो मैं बड़ा हूं भगवान से क्योंकि मैंने आपको भगवान बनाया। आप समझे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो दंभ अहंकार, तो अगले श्लोक में आप देखेंगे श्लोक संख्या कितना है, पांचवा श्लोक संख्या पांचवे में आप निकालिए। इसमें भगवान कहते हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। तो ये पूजा नहीं है, ये पूजा भी नहीं है, भगवान इसको पूजा नहीं कहते हैं। वो पूजा के नाम पर कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में ना तो श्रद्धा है और ना पूजा है। भगवान उस श्रद्धा को क्या कहते हैं? दंभ अहंकार है। और उस पूजा को क्या कहते हैं? घोर तपस्या कर रहा है, वो घोर तपस्या कर रहा है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, जो तपस्या करते हैं दंभ अहंकार से युक्ता, श्रद्धा नहीं है, दंभ और अहंकार है। दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, काम कामना और राग और बल से भरे हुए हैं वो, बल उनके, उनको अपना अपना बल है उनके, वो जो है ना बलवान अपने को समझते हैं कि मैं ज्यादा बलवान हूं, क्योंकि जिसको मैंने भगवान बनाया है अपने बल से उसको भगवान बनाया है ना। तो इस प्रकार से जो है ना वो अपने को बलवान ज्यादा समझ रहा है कि नहीं। तो ये जो है ना मतलब दुष्ट असुर, इनको भगवान के तान विद्यासुर निश्चयान, इन लोगों को निश्चित रूप से असुर मानो, असुर मानो इनको निश्चित रूप से, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं, ये पूजा करते हैं, पूजा करते हैं तो किसी रूप में वो भगवान की धारणा बना लेते हैं कि भाई ये भगवान है, लेकिन बाद में फिर क्या, वो क्या सोचते हैं, बाद में तो हम भगवान बन जाएंगे और उनको खत्म, उनको तो खत्म करना ही है कि नहीं। तो ये असुर, ये आसुरी भावना होती है, है? जो आसुरी भावना से पूजा करते हैं वो जो है ना किसी को भी भगवान वो बना लेते हैं, और पूजा करके वो सोचते हैं कि हम जो है फिर भगवान बन जाएंगे और इनको खत्म कर देंगे, हटो हटो मैं अब मैं भगवान बन गया हूं, तो जो भावना होती है। तो भगवान कहते हैं कि तान विध्यासुर निश्चयान, उनको निश्चित रूप से असुर जानो, अगर शास्त्र विधि का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से असुर जानो, है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से तप्यन्ते, बहुत घोर तपस्या करे कोई व्यक्ति, है ना, जैसे खाना नहीं खाना, है ना, बिना किसी विधि विधान के लोग जो है तपस्या करते हैं तो बड़ी तपस्या करते हैं, है ना, नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो वो जो है आसुरी भावना है, आसुरी भावना है ना। अगर शास्त्र विधि के अनुसार अगर तपस्या भी करनी है तो एकादशी के दिन करो, है कि ना, एकादशी के दिन करो। लेकिन कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं नहीं मैं एकादशी को छोड़कर दसवीं तिथि को व्रत करूंगा, है ना, तो वो क्या हो गया, असुर। गलती से भी कोई व्यक्ति दसवीं तिथि को अगर व्रत करता है, गलती से भी अगर उसने एकादशी का व्रत किया कब, दसवीं को, तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, बड़ा दोष हो जाता है उसमें, शास्त्र कहते हैं, है ना। जैसे कि हिरण्याक्ष का जब भगवान वराह ने वध किया था तो वो जना युद्ध कर रहा था भगवान से, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, है, उस समय ब्रह्मा जी भी बड़े चिंतित हो गए, इस असुर की शक्ति बढ़ रही है भगवान के साथ युद्ध करते समय भी, है, भगवान तो खेल रहे थे उस असुर के साथ, है, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे भयभीत हो रहे थे जैसे कोई बच्चा सांप से खेले, है ना, तो माँ बाप बड़े भयभीत हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के साथ जब हिरण्याक्ष युद्ध कर रहा था तो ब्रह्मा जी बड़े भयभीत हो गए और बड़ी देर में मरा वो, तो ब्रह्मा जी जो ना पूछने लगे भगवान से कि प्रभु आपके साथ युद्ध करते समय इसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, इसका क्या कारण है, तो भगवान ने क्या कहा कि पूर्व काल में ऋषि मुनियों ने एकादशी का व्रत गलती से कर लिया दसवीं को, इसलिए इसकी शक्ति बढ़ गई, आसुरी शक्ति बढ़ती है ना। तो अगर गलती से भी दसवीं तिथि को कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत कर ले, है ना, वराह द्वादशी, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था किस दिन, द्वादशी के दिन, द्वादशी के दिन, तो उसके पहले एकादशी थी, है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि उस द्वादशी को ही व्रत करते हैं, क्योंकि उसके पहले की एकादशी अगर उसमें दसवीं तिथि मिली है तो उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, वो द्वादशी के दिन व्रत करो जिस दिन वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था, वो शुद्ध है, एकादशी छोड़ दो, तो शास्त्र बताते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो है ना एकादशी की का व्रत करता है दसवीं तिथि को और बड़ा घोर तपस्या करे, बड़ा घोर निर्जला करे, निर्जला करे, है ना, लेकिन वो जितना घोर तपस्या कर रहा है उतना ज्यादा पाप कर रहा है, उतना ज्यादा दोष लग रहा है उसको, है ना। इसलिए शास्त्र विधि को जानना बहुत जरूरी है, शास्त्र विधि के अनुसार पूजा करना बहुत जरूरी है ना। तो इस तरह से भगवान आगे चल करके बताएंगे, और अर्जुन का प्रश्न है इस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अब भगवान ने कहा है कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः, अपने शरीर में स्थित जो प्राणी है उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, जैसे बृकासुर था, बृकासुर है, तो उसने पूजा करना शुरू की, किसकी, शंकर जी की, तो कैसे पूजा करना शुरू कर दी उसने शंकर जी की, अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में डालने लगा, अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में डालने लगा, तो इससे क्या होता, क्या शंकर जी प्रसन्न होते, वो उसका भी विचार जो है क्या था, शंकर जी को प्रसन्न करना नहीं था, शंकर जी से वरदान लेना है, इसलिए किसी प्रकार से उनको जो है वो विवश करना चाहता था वरदान देने के लिए, बृकासुर है ना, असुर है इसलिए, है ना, ये कोई शास्त्र की विधि थोड़ी है कि शंकर जी की पूजा करो अपने शरीर का मांस काट काट करके, शंकर जी की पूजा भी करने के लिए शास्त्र की कुछ विधि बताई गई है, बेल पत्र होता है उससे शंकर जी की पूजा की जाती है, लेकिन उसने कोई शास्त्र विधि का पालन नहीं किया, बस शंकर जी को वो उनकी दया का फायदा उठाना चाहता था कि जो है अगर मैं ऐसे अपने शरीर का मांस काट कर कर डालूंगा तो उनको वरदान देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं काटता रहूंगा। अब वो दयालु हैं, उनको दुख होता है कि देखो ये जो ना शरीर का मांस, तो शंकर जी की दया का फायदा उठाना चाहता है। और शंकर जी जब नहीं आए, 7 दिन हो गए, 7 दिन तक लगातार अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में डालता रहा। 7 दिन के बाद जब शंकर जी नहीं आए तो गुस्से में क्या किया उसने, अपने एक बाएं हाथ से अपने सिर के बाल पकड़े और दाएं हाथ से तलवार काट करके अपना सिर अग्नि में डालना चाहा, अग्नि में डालना चाहा अपना सिर गुस्से में। देखा कि आना पड़ेगा उनको मुझे वरदान देना, नहीं तो मैं अपना सिर काट लूंगा, है ना। ये है आश्री भाव दंभ अहंकार, ये कोई श्रद्धा थोड़ी है। दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ अहंकार के कारण है ना, वरदान दो नहीं तो मैं अपना अभी सिर काट देता हूँ। तो शंकर जी प्रकट हो गए, उसको रोका, अरे भैया ऐसा मत करो, क्यों सिर काट रहे हो, अरे मैं तो थोड़े से बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाता, तुमने बेलपत्र भी तो नहीं चढ़ाया मुझको, है ना। अच्छा बोलो क्या चाहते हो। तो शंकर जी ने कृपा करी तो उसके शरीर का सब पूरा मांस आ गया और पूरा स्वस्थ हो गया उसका शरीर। अब शंकर जी जब प्रसन्न प्रकट हुए कि बोलो वरदान मांगो, तो कोई स्तुति प्रार्थना सम्मान कुछ नहीं किया, असुर है ना। कोई व्यक्ति अपने से बड़ा मिले और आप जो है ना बैठे हो तो क्या करोगे, हाथ जोड़ना है, सम्मान करना है, खड़े होना है, उनको बैठाना है ना, कुछ प्रार्थना स्तुति करना, ये तो शिष्टाचार है। उसने कुछ भी नहीं, ना प्रार्थना ना स्तुति ना सम्मान कुछ नहीं किया और क्या कहा, जिसके सिर में मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ये वरदान दीजिए। देखा अशिष्ट है, असुर है ना। तो श्रद्धा थोड़ी है उसकी शंकर जी में। और शंकर जी कहते हैं अरे नहीं नहीं भैया ऐसा वरदान मत मांगो, तो मैं सिर काट लूंगा वरदान नहीं दोगे तो मैं अपना सिर काट लूंगा। अब वो बेचारे दयालु हैं, है? तो उनकी दया का फायदा उठा रहा है, वरदान देना पड़ेगा तुमको। अब शंकर जी महात्मा हैं, बेचारे क्या करें, नहीं तो सिर काट रहा है अपना। अच्छा ठीक है दे दिया वरदान, है ना। और दे दिया वरदान तो जिसने वरदान दिया उसी को ही सबसे पहले मारना है। देखा शंकर जी से वरदान पाकर के सबसे पहले शंकर जी को ही खत्म करना, ये है ना असुर, ये असुर है। तो मतलब ये श्रद्धा नहीं होती है, ये दंभ अहंकार है ना। तो ऐसे जो ना असुर लोग होते हैं, जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन्हीं देवताओं का फिर अपराध करते हैं, है ना। तो तान विध्यास निश्चयान, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से असुर समझो, है ना। तो कोई शास्त्र की जो ना विधि नहीं है, जैसे हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है ना। तो ब्रह्मा जी को मान रहा है कि वे अविनाशी हैं, ब्रह्मा जी का पद अविनाशी है, ब्रह्मा जी का पद अविनाशी है और ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या और समाधि के द्वारा वो पद प्राप्त किया है और मुझे वो पद प्राप्त करना है, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करना है। अब सोचिए ब्रह्मा जी का पद अगर प्राप्त करना है तो ब्रह्मा जी को पद से हटाना है और फिर ब्रह्मा जी का पद अविनाशी भी बता रहा है, ये क्या है? ये कोई शास्त्र के अनुसार ये कोई ऐसी बात हो सकती है? शास्त्र कभी नहीं ऐसा बताते हैं। ब्रह्मा जी को पद प्राप्त हुआ है किसके द्वारा? भगवान विष्णु के द्वारा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को शक्ति दी सृष्टि बनाने की, है ना। लेकिन शरण कैसे, वो बिल्कुल शास्त्र की कोई विधि नहीं, अपने ढंग से विचार कर रहा है कि ब्रह्मा जी का पद अविनाशी है और मैं ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लूंगा, और जब ब्रह्म जी का पद प्राप्त हो जाएगा तो बस सब कानून मेरे हाथ में आ जाएगा। जबकि ब्रह्म जी के हाथ में कोई कानून नहीं है, ब्रह्मा जी भगवान के कानून को ही केवल बताते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो सोचता है बस ब्रह्मा जी का पद मिल जाए तो मैं अविनाशी भी हो जाऊंगा और सब कानून मेरे हाथ में आ जाएगा, जितने भी पाप और पुण्य के जो नियम है वो मैं फिर बनाऊंगा, है ना। और क्या क्या बनाऊंगा, पाप पुण्य के नियम, जितने प्रकार के पाप हैं उनको पुण्य बना दूंगा मैं, ठीक है, जितने प्रकार के पाप हैं उनको पुण्य बना दूंगा और उनसे लोग स्वर्ग जाएंगे, और जितने प्रकार के पुण्य हैं उनको पाप बना दूंगा, उनसे लोग नरक में जाएंगे, सब हरे कृष्णा वाले नरक में जाएंगे। मैं ब्रह्मा बन जाऊं, मैं तपस्या करके ब्रह्मा का पद पालूंगा और हरे कृष्णा वालों को सबको नरक भेजूंगा, और जितने भी जो है पापी हैं, असुर हैं, अपने जो है परिवार वाले हैं, वंश के लोग हैं, उन सबको स्वर्ग भेजूंगा, है ना। इस प्रकार से घोर तपस्या की, घोर तपस्या तप्यन्ते तप्यन्ते घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, घोर तपस्या की, अशास्त्र विहितम, शास्त्र के विरुद्ध घोर तपस्या की। बैकुंठ, बैकुंठ कहता है, बैकुंठ से तो गिरना पड़ता है, अब शास्त्र कहते हैं बैकुंठ वो स्थान है, बैकुंठ का मतलब ये जहां से गिरना ना पड़े, तो वो कहता है बैकुंठ से लोगों को गिरना पड़ता है, और मैं ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करूंगा वहां से कोई नहीं गिरता है। जबकि भगवान कहते हैं गीता में क्या, उल्टा आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनरावर्तनो, ब्रह्मलोक तक व्यक्ति को गिरना पड़ता है, कोई अगर ब्रह्मलोक तक भी अगर चला जाएगा तो पुनरावर्ति गिरना पड़ता है। माम पे तो कौन दे पुनर्जन्म आवेदते, मेरे धाम में कोई आए तो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होगा। और वो उल्टा कहता है, वो कहता है बैकुंठ से, बैकुंठ बेकार है, बैकुंठ से तो गिरना पड़ता है, और ब्रह्मा जी का लोग जो है अविनाशी है, अब ब्रह्मा जी का लोग अविनाशी है और ब्रह्मा जी को खुद गिराना चाहता है, ब्रह्मा जी को गिराना चाहता है और ब्रह्मा का पद पाना चाहता है ना। इस प्रकार के जो आश्री लोग होते हैं उनके अंदर सत्य नहीं है, इसलिए गीता में भगवान ने 16वें अध्याय में बताया ना, सत्यम देशो विदिते, उनके अंदर सत्य होता ही नहीं है, सत्य को बदल करके बोलेंगे, तोड़ करके मरोड़ करके बोलेंगे, और कभी इधर से कभी उल्टा कभी सीधा अपनी बात को जोड़ेंगे, सत्य हो ही नहीं सकता है, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं बोलते हैं तो फिर सत्य कैसे बोलेंगे, सत्य हो नहीं सकता उनके अंदर, है ना। तो अर्जुन का जो प्रश्न है इसलिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया है जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि अर्जुन को जब आत्म साक्षात्कार हो गया भगवत गीता के अनुसार, तो अर्जुन फिर अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे उनकी मृत्यु पर अर्जुन ने शोक क्यों किया, और युधिष्ठिर महाराज भी कृष्ण के इतने बड़े महान भक्त हैं, तो भी फिर धृतराष्ट्र जब वन को चले गए तो शोक क्यों कर रहे हैं, है ना। इसके उत्तर में मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि भगवत गीता को समझना इतना आसान नहीं है कि जैसे आत्म साक्षात्कार किसी व्यक्ति हो जाए तो बस वो बिल्कुल शांत हो जाता है, और उसको कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, है ना। मेरा एक प्रश्न है, अर्जुन को आत्म साक्षात्कार भगवान ने कराया भगवत गीता का उपदेश करके, और फिर भगवान साथ साथ अर्जुन को क्या करा रहे हैं, युद्ध करा रहे हैं, और क्रोध भी दिला रहे हैं अर्जुन को। अब ये बताइए कि अर्जुन को जब आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर अर्जुन ने युद्ध कैसे किया, और अर्जुन भी तो गीता में यही प्रश्न कर रहे हैं कि इस घोर कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं। जब आपके विचार से बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म की तुलना में, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अब मेरा प्रश्न है, अर्जुन को जब आत्मज्ञान हो गया तो फिर अर्जुन ने फिर लड़ाई क्यों करी। लड़ाई में तो कितने अपने संबंधियों का वध किया, मारा, हत्या की और फिर गुस्सा भी किया। तो इतना गीता सुनने के बाद फिर कैसे अर्जुन ने गुस्सा किया और युद्ध किया। इतना गीता सुनने के बाद भी अर्जुन ने क्यों गुस्सा किया और युद्ध किया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मतलब यह है कि जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो हर कार्य वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो गुस्सा भी होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो दुखी भी होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो शोक भी करता है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर वो गुस्सा होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसको हृदय में शांति प्राप्त होती है। ऊपर से गुस्सा हो अंदर से शांति मिले वो ज्यादा अच्छा है ना, कि आप जो है ऊपर से शांत रहो अंदर से गुस्सा हो, क्या अच्छा है ये शनि ना। आत्मज्ञानी जो व्यक्ति होता है, आत्म साक्षात्कार जिसको प्राप्त हो जाता है, तो वो सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, शोक करता है, हर्ष मनाता है, सब कुछ करता है। किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अर्जुन शोक कर रहे हैं अभिमन्यु की मृत्यु का, क्यों? ये शोक करना उचित है, क्यों? क्योंकि अभिमन्यु अर्जुन की सेवा में मारा गया, अर्जुन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे हैं और अभिमन्यु अर्जुन के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो अभिमन्यु कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो कृष्ण की सेवा में क्योंकि वो मारा गया इसलिए जो शोक कर रहे हैं अर्जुन वो कृष्ण से ही संबंधित है ना। इस प्रकार से जो है अर्जुन का जो शोक है वो दिव्य है, क्योंकि वो जो व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ है वो भगवान से जुड़ा हुआ है। अगर मैं भगवान से जुड़ा हूं, आज का जो प्रभुपाद जी का कथन है आज की तारीख में, जो हर दिन का जो है प्रभुपाद जी का जो कैलेंडर बना हुआ है, आज की तारीख में प्रभुपाद का जो पत्र है उसमें प्रभुपाद बोलते हैं अपने शिष्यों से कि तुम लोग मेरे हो। अपने शिष्यों कहते हैं तुम लोग मेरे हो और मैं कृष्ण का हूं, इसलिए तुम लोग कृष्ण के हो। इसलिए इसका मतलब यह कि अगर मैं आप लोगों पर आसक्त हूं, आप लोगों में अगर मेरी ममता है, आसक्ति है, घनिष्ठता है, तो वो दिव्य है। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हो, मुझसे जुड़े हो, क्यों? कृष्ण के कारण। कृष्ण, क्योंकि मैं कृष्ण से जुड़ा हूं इसलिए आप मुझसे जुड़े हो, इसका मतलब है कि आप भक्त हो। आप समझे, आप मेरे अंदर कुछ भक्ति का गुण देख रहे हैं और इस कारण से अगर आप मेरा सम्मान कर रहे हैं तो आप कृष्ण का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आपने मेरे अंदर वो गुण देखा है जो कृष्ण के भक्त का होता है। तीसरे से अगर मैं आपका सम्मान करता हूं और आपको भक्त मानता हूं तो ये क्या है, ये कृष्ण की प्रसन्नता है। आप सुन रहे हैं? तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भी शोक कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए, क्यों? धृतराष्ट्र ने उनका पालन पोषण किया युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज अगर कृष्ण को समर्पित हैं तो धृतराष्ट्र ने एक प्रकार से कृष्ण की ही सेवा करी है, क्योंकि युधिष्ठिर के जीवन की रक्षा करी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो युधिष्ठिर जो है शोक कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे जीवन की रक्षा की, आश्रय दिया जब हमारे पिता का देहांत हो गया था, अब वो जो है ना हमारे ताऊ हैं, तो वो जो है ना अब कहाँ चले गए हमसे दुखी होकर के, हमने शायद उनकी ठीक से सेवा नहीं की। इस प्रकार से तो अगर किसी के अंदर ऐसे इस प्रकार से गुण देखे जाएं तो वो जो है गलत नहीं है, है ना। भक्त का स्वभाव होता है दूसरों के गुणों को हमेशा देखता है ना। तो धृतराष्ट्र का एक ये बहुत बड़ा गुण है। हालांकि धृतराष्ट्र ने बहुत गलतियां की थी जिनके कारण धृतराष्ट्र के पुत्र मारे गए और धृतराष्ट्र के पुत्र जो है ना ज्यादा जिम्मेदार थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु से युधिष्ठिर को कोई शोक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल कृष्ण के विरोधी थे। लेकिन धृतराष्ट्र जो है कई मामलों में सम्मान के पात्र थे, क्योंकि एक तो वृद्ध है, शास्त्र कहते हैं कि वृद्धों की रक्षा होनी चाहिए, स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए, ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए, बालकों की रक्षा होनी चाहिए, है ना? तो वृद्ध वृद्ध का सम्मान होना चाहिए, वृद्ध की रक्षा होनी चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं। तो इस कारण से युधिष्ठिर महाराज जो है चिंता कर रहे हैं धृतराष्ट्र की, बूढ़े इसलिए भी, और वृद्ध होने के कारण अब धृतराष्ट्र कुछ कर भी नहीं सकते। उल्टा जब उनके पुत्र जिंदा थे तो उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं बनाई पांडवों को मार डालने की, तो धृतराष्ट्र जो है सम्मान के इसलिए पात्र हैं। एक तो बूढ़े हैं, अब वृद्धावस्था में उनके पुत्र मारे जा चुके हैं, अब वो युधिष्ठिर की दया पर आश्रित हैं, तो युधिष्ठिर जो है ना उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, अब कुछ उल्टा काम कर नहीं सकते युधिष्ठिर का, ये भी है। और फिर दूसरा गुण ये भी है कि धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का पालन किया है, चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन जब वो बिल्कुल छोटे बच्चे थे और पिता का देहांत हो गया था, तो इनकी माता के तहत इनके सब भाइयों को भी किसने पाला? धृतराष्ट्र ने ही पाला, है ना? इस प्रकार से जो है युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं। इनका प्रश्न है कि संन्यास में और योग में क्या अंतर है? भगवान बताते हैं योग का मतलब है कर्म योग, और संन्यास का मतलब है जब कोई व्यक्ति सब जो समाज की और परिवार की सब जिम्मेदारियों को छोड़ करके और बिल्कुल एकांत में साधना करे तो वो संन्यास कहलाता है। संन्यास का भी भगवान ने वर्णन किया है, लेकिन संक्षेप में वर्णन किया, क्यों? क्योंकि वो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, कठिन विधि है। और जो योग है भगवान से सीधे जोड़ा जाए अपने को भगवान के जो है भगवान के लिए अपने कर्म समर्पित किए जाएं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाएं, तो वो विधि जो ना बड़ी आसान है और सीधे भगवान से जोड़ने वाली है, है ना? इसलिए वो योग। इनका प्रश्न है कि जो भौतिक जगत में है वो सब आध्यात्मिक जगत में भी है, तो क्या आध्यात्मिक जगत में भी हिंसा क्रोध और जितने गलत काम है वो सब होते हैं? आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है, लेकिन शुद्ध रूप में है, अपने शुद्ध रूप में है आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में वो चीज जो है उसका विकृत प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब में जो है ना कुछ अच्छा और कुछ बुरा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है वो सब अच्छा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि चोरी है, जैसे भगवान कृष्ण चोरी करते हैं, जब भगवान कृष्ण चोरी करते हैं तो ये जो है शुद्ध है, और ये आनंद सच्चित आनंद ये लीला है भगवान की, सच्चित आनंद लीला है चोरी की, क्योंकि इस चोरी से भगवान सुख प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, है कि नहीं? और बदमाशी, बदमाशी भी है, भगवान जो है राधा रानी को छेड़ते हैं, राधा रानी को रास्ते में गिरा देते हैं, और राधा रानी जो है ना कहती हैं कि हे कृष्ण इस प्रकार से मत करो, मुझे तंग मत करो, तो कृष्ण आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना कृष्ण के अंदर जितने भी चीजें हैं सब कुछ हैं, कृष्ण है हर वस्तु के स्रोत हैं, हर वस्तु के कारण हैं हर चीज के, लेकिन कृष्ण में हर चीज शुद्ध रूप में है। इस भौतिक जगत में फिर जो है ना जब उसकी विकृत छाया पड़ती है तो कुछ अच्छा मालूम पड़ता है, कुछ खराब मालूम पड़ता है ना? लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है और वो शुद्ध रूप में है। उनका प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में जो आ जाते हैं वे काम चोर होते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या जवाब दें। देखिए बहुत से लोग इस प्रकार के भी साधु बनते हैं, कलयुग में बहुत से साधु इस तरह के भी होते हैं जो कि अपने घर परिवार की सब जिम्मेदारियों को छोड़ करके साधु बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है फिर खाने और सोने की अच्छी सुविधा मिलेगी, कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल खाते हैं और सोते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं वो फिर बदनाम करते हैं, तो जो उचित साधु हैं उनको भी बदनाम करते हैं। लेकिन इस कौन में जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए बड़े कठोर नियम बनाए गए हैं, बड़ी कठोर तपस्या है इसमें, है ना। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार आपको किस समय जागना है, ब्राह्म मुहूर्त जो है ना, ये सबसे ज्यादा शुभ समय होता है, उसी समय ही सबको नींद आती है ना। तो शरीर की बहुत बड़ी तपस्या है, उस समय आपको जागना है, उस समय उठना है। तो शास्त्र के अनुसार जो है तपस्या, तो उस समय आप उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको उठना है, मंगल आरती में भाग लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जाप करना है, जाप में मन नहीं लगता है लेकिन आपको जाप करना है ना। तो ये आसान नहीं है, इस तरह से जो है जो नियम होते हैं इनका पालन करना आसान नहीं है। बहुत से लोग जो है आते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सौभाग्य नहीं है कि वो इन नियमों का पालन कर सकें, है ना। तो ये बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो कि इन नियमों का पालन कर पाते हैं, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में भी अभ्यास करे इन नियमों का पालन करने का, तो फिर वो समझ सकता है कि कितनी कठिनाई है इसमें, ठीक है ना। ये जो मंदिर बने हैं ये लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए होते हैं, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है समो दमस तपः शौचम। सम का मतलब है मन को बस में करना, दम का मतलब है इंद्रियों को बस में करना, तपस्या शौच, तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है ना। तो जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, अगर ऐसी तपस्या को भी जो ना वे लोग कहते हैं कि ये कुछ काम नहीं करते हैं, इसका मतलब यही है कि वे लोग घोर अज्ञान में हैं और वो नहीं जानते हैं कि इस जीवन के बाद दूसरा जीवन है ना। उनको कुछ भी श्रद्धा नहीं है, आप समझे ना, वो उनके शास्त्र में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। और वे जो ना जो परिश्रम कर रहे हैं ना, वो कैसा परिश्रम कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं ठीक है भाई हम लोग तो कुछ परिश्रम नहीं कर रहे हैं और वे लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं, तो हमारा कहना है कि उनका कैसा परिश्रम है, गधे जैसा, गधा बहुत परिश्रम करता है, ये मिलता क्या उसको, खाली घास खाने को मिलती है और घास पहले से है, तो ये मूर्खता है उसकी। वे जो परिश्रम कर रहे हैं ये उनकी मूर्खता है, गधा तएव गोखरा, बैल और गधा परिश्रम बहुत करता है, गधा बहुत परिश्रम करता है और घास खाने को मिलती है और वो सोचता है कि घास मुझको इसने परिश्रम करने के बदौलत मिली है, घास खाने को इसलिए परिश्रम कर रहे हैं पेट की चार रोटी खाने के लिए, और वो पेट की चार रोटी वैसे भी मिलने वाली है, और दिन रात परिश्रम करते हैं गधे के समान या बैल के समान परिश्रम करते हैं। कोल्हू का बैल होता है तो वो कोल्हू के चारों तरफ घूमता रहता है दिन भर, और वो सोचता है कि मैं 10 किलोमीटर चला हूं आज, 20 किलोमीटर चला हूं आज, लेकिन वो होता कहां है, वहीं का वहीं रहता है कि नहीं। परिश्रम कर रहा है और सोच रहा है कि मैं 10 किलोमीटर चला, मैं 20 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चला, दिन भर वो वहीं का वहीं रहता है। तो गधे और बैल के समान परिश्रम कर रहे हैं वो, क्या मिलता है ना, मूर्ख है ना। तो जो बुद्धिमान होता है तो वो जो ना फल प्राप्त करता है बिना परिश्रम के, और जो मूर्ख होता है वो परिश्रम करता है और कुछ फल नहीं मिलता उसको, है कि नहीं। तो हम तो ऐसे बुद्धिमान बनना चाहते हैं, मूर्खों की तरह परिश्रम नहीं करना चाहते। जो बुद्धिमान होता है वो थोड़ा काम करता है और ज्यादा फल प्राप्त करता है कि नहीं। और जो मूर्ख होता है वो बहुत परिश्रम करता है और फल मिलता है थोड़ा सा जरा सा फल मिलता है ना। मूर्ख हैं। इनका प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कई बार कि परमात्मा को कष्ट होता है, तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कहते कि मुझको कष्ट होता है। भगवान ने कहा कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसा माम चैवान्तः शरीरस्थम, माम चैवान्तः शरीरस्थम, मुझको जो शरीर के अंदर स्थित है मुझको कष्ट पहुंचाते। तो भगवान तो यहां पर यही कह रहे हैं माम चैवान्तः शरीरस्थम, मुझको तकलीफ पहुंचाते हैं जो मैं शरीर के अंदर स्थित हूं, है ना। लेकिन हाँ कई बार भगवान ने कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन के सती, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है ना। तो भगवान ने ये बात कही। लेकिन जब भगवान ये बात कहते हैं तो उसको कहते हैं गुह्यतरम, ये गुह्यतर बात है। इन गुह्यतम बात, गुह्यतम बात में फिर भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में आओ। मैं जब भगवान अपना वर्णन करते हैं कि मैं हूं ऐसा, तो उसको फिर गुह्यतम कहते हैं, है ना। जैसे 15वें अध्याय में भगवान ने कहा सर्वशिक्षा अहम हृदय सन्निविष्टो, सब कहते हैं मैं स्थित हूं। तो 15वें अध्याय के अंत में भगवान ने क्या कहा, इति गुह्यतम शास्त्रम, ये गुह्यतम शास्त्र है। गुह्यतम सबसे ज्यादा गोपनीय बात है। जब भगवान ने कहा कि मैं हूं, तो जब भगवान जब मैं मेरी शरण में आओ हा? और मुझे नमस्कार करो जब कहते हैं, तो भगवान उसको गुह्यतम बात कहते हैं, ठीक है ना। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा गुह्यतम, तो उस अध्याय में भगवान ने क्या कहा, मन मनाभो मद भक्तो मदयाजी माम मुस्कुरो, मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, तो गुह्यतम बात है। लेकिन जहां पर भगवान कहते हैं जैसे ईश्वर आसर्व भूतानाम हृदय से, ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, तो उसको भगवान ने कहा इधर ये ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, गुह्य से गुह्यतर है। गुह्यतर माने ज्यादा गोपनीय है, गोपनीय से भी ज्यादा गोपनीय बात है। लेकिन सबसे ज्यादा गोपनीय बात फिर भगवान ने कहा सर्व गुह्यतम भूया, सबसे ज्यादा गोपनीय बात फिर से सुनो। तो फिर क्या कहा, मन मनाभो मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरो। तो जहां भगवान अपनी बात करने लगते हैं वो सबसे गुह्यतम बात है, और जहां परमात्मा की बात करते हैं वो गुह्यतर है, और जहां पर आत्मा की बात करते हैं वो गुह्य बात है ना। आत्मा जो देही वो शरीर में अविनाशी है, तो गुह्य बात है ना। इस प्रकार से गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, ये तीन प्रकार की बातें भगवान बताते हैं। तो इनका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और अर्जुन को भगवद गीता सुनने में कितना घंटा लगा। अच्छा दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर मैं पहले देता हूँ। अर्जुन को भगवद गीता सुनने में 45 मिनट का समय लगा, 45 मिनट हाँ, एक घंटा 45 मिनट। तो इस तरह से पूरी गीता का पाठ जो है एक घंटे में आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा और अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश पहले क्यों नहीं दिया, ये उसी प्रकार से है कि जैसे डॉक्टर है दवाई कब देता है मरीज को, जब उसको बीमार बुखार होता है, जब बीमार होता है तब दवाई देता है ना। अर्जुन के हृदय में दुर्बलता आई देख करके, अपने संबंधियों को देख करके, तो वो समय था जब भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, अर्जुन के हृदय की दुर्बलता को दूर किया, है ना। और फिर अर्जुन को तो भगवान ने एक प्रकार से एक निमित्त बनाया है, इन गीता का उपदेश तो दिया है हम लोगों के लिए। और ये जो है ना बड़ी सामान्य स्थिति है, जैसे अर्जुन अपने घर परिवार के प्रति मोह से बन गए, हर व्यक्ति को मोह है अपने घर परिवार से, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने घर परिवार का पालन करो और उनकी सुरक्षा करो और उनको खुश करो, और यही सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। लोग यही कहते हैं भाई हमारी तो यही सबसे बड़ी पूजा है, अपना घर परिवार का पेट पाल रहे हैं, बस यही हमारी बड़ी पूजा है बस। इसी प्रकार से अर्जुन का भी मोह है कि ये सब जो है ना जो हमारे संबंधी हैं तो इनको मैं कैसे मारूं, है मेरा तो जो है फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज यही है कि इनको खुश करें और इनकी सेवा करें, है कि नहीं। तो यही हर व्यक्ति को जो है अपने घर और परिवार, अपने मित्रों में, है ना, ये सब मोह भरा हुआ, उसी को अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए गीता भगवान ने अर्जुन को ऐसे समय में बताई जो स्थिति सबके लिए सामान्य है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की, त्रिकोणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा। वो भगवान ने गीता में बार बार समझाया है।